एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज की ज्ञान गोष्ठी में हम बात करेंगे एलिजाबेथ गिलबर्ट की एक बहुत ही जानी मानी और प्रेरणा देने वाली किताब बिग मैजिक क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर के बारे में। ये वो किताब है जो हमारी क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया रचने की सोच को शायद बदल सकती है।
और ये विषय ना आज के समय में बहुत जरूरी लगता है। हम में से कितने लोग हैं जो अंदर ही अंदर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, पर वो डर होता ना।
हाँ बिल्कुल, लगता है जैसे ये सब तो बस बड़े आर्टिस्ट लोगों के लिए है।
सही कहा। और ये किताब इसी डर को पकड़ती है। ये दिखाती है कि डर तो रहेगा पर उसके साथ रहते हुए भी एक बढ़िया एक तरह से जादुई क्रिएटिव जिंदगी जी जा सकती है।
और ये सिर्फ पेंटिंग या लिखने के बारे में नहीं है, है ना?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो जिंदगी को ज्यादा मजे से ज्यादा दिलचस्पी से जीने का तरीका है हम सबके लिए।
हाँ, और एलिजाबेथ गिलबर्ट उन्हें कौन नहीं जानता, खासकर उनकी वर्ल्ड फेमस किताब ईट प्रे लव के बाद। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ उस एक किताब तक ही नहीं है।
बिल्कुल, वो पहले से ही एक जानी मानी लेखिका थी पर ईट प्रे लव से जो शोहरत मिली वो तो मतलब जबरदस्त थी, शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा।
हाँ,
और यही जो उनका सफर आया ना, गुमनामी से एकदम दुनिया भर में पहचान और फिर उस पहचान के दबाव को झेलना, इसी अनुभव ने उन्हें ये क्रिएटिविटी, उम्मीदें और डर, इनके उलझे हुए रिश्ते पर बात करने का एक बहुत ही सच्चा जमीनी नजरिया दिया है।
सही, वो कोई एक्सपर्ट की तरह ऊपर से नहीं बता रही बल्कि जैसे एक दोस्त की तरह अपने अनुभव बांट रही हैं।
हाँ, उनकी वो टेड टॉक भी तो थी, योर इल्यूसिव क्रिएटिव जीनियस, उसमें भी उन्होंने इसी तरह की बात की थी कि शायद ये जो क्रिएटिविटी है या जीनियस है ये हमारे अंदर से नहीं कहीं बाहर से आता है।
हाँ, वो बड़ी दिलचस्प बात थी। तो फिर बिग मैजिक आखिर है क्या ये आसान शब्दों में?
देखो, सीधी सी बात ये है कि ये किताब उन सब डरों और गलतफहमियों को तोड़ती है जो हमने क्रिएटिविटी को लेके पाल रखी हैं। गिलबर्ट साफ कहती हैं कि क्रिएटिव होना कुछ दुखी परेशान जीनियस लोगों का ही काम नहीं है।
अच्छा।
हाँ, वो कहती हैं ये हर इंसान का हक है, जैसे सांस लेना।
एक नेचुरल सी बात है। और वो आइडियाज वाली बात वो मुझे बड़ी कमाल की लगी थी।
हाँ, वो तो है ही सबसे क्रांतिकारी कि क्रिएटिविटी कोई अंदर की लड़ाई नहीं है बल्कि एक बाहरी मदद है, सहयोग है। गिलबर्ट का मानना है कि आइडियाज यानी नए विचार वो अपने आप में जिंदा हैं।
जिंदा मतलब
जैसे उनमें अपनी एनर्जी हो, अपनी कॉन्शियसनेस हो और वो दुनिया में सच होना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं। इसके लिए वो हम इंसानों में से पार्टनर ढूंढते हैं।
वाह, ये सोच तो पूरी प्रक्रिया को कितना हल्का बना देती है
ना। और ये किताब सिर्फ उनके लिए नहीं है जो पेंटिंग करते हैं या लिखते हैं।
हाँ, ये सबके लिए है। कोई भी जो अपनी रोज की जिंदगी में कुछ नयापन लाना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, चाहे वो बगीचे में कुछ उगाना हो,
बिल्कुल,
या ऑफिस की किसी प्रॉब्लम का कोई नया हल निकालना हो, या बस अपनी जिंदगी को थोड़ी ज्यादा उत्सुकता से आचरज से देखना हो।
हाँ, तो ये किताब एक तरह से हमें एक सफर पर ले जाती है।
बिल्कुल।
पहले वो डर को समझने और उससे दोस्ती करने की बात करती है, फिर वो प्रेरणा के उस थोड़े रहस्यमयी जादुई पहलू की तरफ ले जाती है और आखिर में बताती है कि कैसे मेहनत और भरोसे के साथ अपना काम करें बिना नतीजों के पीछे भागे।
ये तो वाकई सोच बदलने वाला नजरिया है। चलिए अब किताब के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। शुरुआत होती है हिम्मत से, करेज।
हाँ, गिलबर्ट मानती हैं कि क्रिएटिविटी के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर तो डर ही है, लेकिन वो ये नहीं कहती कि डर को खत्म कर दो।
अच्छा, तो फिर क्या?
वो कहती हैं डर तो रहेगा, वो नेचुरल है, उसे भगा नहीं सकते, पर उसे फैसले लेने का हक मत दो।
यहाँ हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डरो मत, बल्कि ये कि डर लग रहा है फिर भी करो।
एग्जैक्टली। उनकी वो कार वाली मिसाल याद है वो?
हाँ हाँ, बहुत अच्छी है वो।
कि सोचो एक रोड ट्रिप पर हो, गाड़ी में आप हो, आपकी क्रिएटिविटी है और पीछे की सीट पर आपका डर भी बैठा है। डर साथ चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, शायद वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। लेकिन उसे स्टीयरिंग व्हील पकड़ने या मैप देखने या रेडियो बदलने का कोई हक नहीं है।
गाड़ी आप चलाओगे, आपकी उत्सुकता चलाएगी, डर बस एक घबराया हुआ पैसेंजर है।
बिल्कुल सही। फिर आता है जादू, एन्चेंटमेंट, और यहीं पर वो बिग मैजिक वाला आइडिया खुलता है।
हाँ, कि आइडिया स्वतंत्र है, जिंदा है और अपना पार्टनर खुद चुनते हैं। ये हमारी आम सोच से कितना अलग है। हम तो यही सोचते हैं ना कि सारे आइडियाज हमारे ही दिमाग से निकले हैं।
हाँ, और वो अपना और एन पैचेट का किस्सा सुनाती है ना, वो बड़ा मजेदार है।
हाँ बताइए ना।
गिलबर्ट के मन में अमेज़न के जंगलों पर एक नॉवल लिखने का आइडिया आया। वो बहुत एक्साइटेड थी पर किसी पर्सनल वजह से फौरन काम शुरू नहीं कर पाईं। फिर कुछ टाइम बाद जब वो एन पैचेट से मिली, जो खुद एक बड़ी लेखिका हैं, तो बातों बातों में पता चला कि एन ठीक उसी तरह के आइडिया पर एक नॉवल लिख रही थी, जो बाद में स्टेट ऑफ वंडर नाम से छपी भी।
अरे वाह, तो गिल्बर्ट क्या कहती हैं इस बारे में?
उनका मानना है कि जब उन्होंने उस आइडिया पर ध्यान देना बंद कर दिया, तो वो आइडिया, वो एनर्जी, वो आगे बढ़ गई और उसने एन पैचेट को अपना नया पार्टनर चुन लिया।
ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये जीनियस होने का बोझ कितना कम कर देता है।
हाँ, आप सिर्फ एक मीडियम हो, एक हेल्पर। अगर कोई आइडिया चला गया तो शायद वो किसी और के लिए था, इसमें दुखी क्यों होना।
इसके बाद आता है इजाजत, परमिशन। ये भी बड़ा जरूरी सबक है। गिल्बर्ट कहती हैं कि आपको क्रिएटिव होने के लिए किसी बाहरी डिग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
किसी आलोचक की हाँ का इंतजार मत करो,
आपको बस खुद को इजाजत देनी है।
ये बात खासकर हमारे यहाँ कितनी लागू होती है ना। हमें लगता है कुछ करने से पहले किसी बड़े की परमिशन चाहिए या कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
बिल्कुल, पर गिल्बर्ट कहती है ये आपका हक है। अपनी बात कहो, अपनी चीज बनाओ, अपना शौक पूरा करो, भले ही उससे दुनिया बदले या न बदले, पैसे मिले या ना मिले।
उनकी वो दोस्त सूजन का उदाहरण याद है, जिन्होंने 40 की उम्र में सिर्फ अपने मजे के लिए फिगर स्केटिंग सीखनी शुरू की।
हाँ, कोई ओलंपिक मेडल का सपना नहीं, बस सीखने का मजा।
बस इंतजार मत करो, अपनी इजाजत खुद लिखो।
अच्छा, अब जादू और इजाजत मिल गई तो उड़ान भरने का मन करता है, लेकिन गिल्बर्ट फिर हमें जमीन पर लाती है लगन के साथ, पर्सिस्टेंस।
हाँ, मतलब आइडिया और प्रेरणा तो ठीक है, पर बिना मेहनत, बिना डिसिप्लिन के तो बात नहीं बनती।
बिल्कुल, वो कहती है रोज काम पर लगो, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे वो जादुई फीलिंग आ रही हो या नहीं।
वो इसे जिद्दी खुशी कहती है ना, स्टबन ग्लैडनेस। हाँ, कि जब मुश्किल हो, रिजल्ट न दिख रहे हो, तब भी अपने काम के प्रति एक पॉजिटिव, एक खेल वाला रवैया रखो।
और उनकी वो शिट सैंडविच वाली बात, वो थोड़ी अजीब है पर है बड़ी सच्ची।
कि हर काम में, चाहे वो कितना भी अच्छा लगे, कुछ ना कुछ मुश्किल, बोरिंग या गंदा हिस्सा होता ही है। सवाल ये है कि तुम अपने चुने हुए रास्ते का कौन सा सैंडविच खाने को तैयार हो।
ये बढ़िया है, और वो परफेक्शनिज्म से निकलने का मंत्र, पूरा करना अच्छा करने से बेहतर है। डन इज बेटर देन गुड।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। किसी चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में अधूरा छोड़ने से अच्छा है उसे पूरा कर दो।
फिर आते भरोसा, ट्रस्ट। ये भी जरूरी है क्योंकि क्रिएटिव सफर में कुछ पक्का तो होता नहीं है।
बिल्कुल, पता नहीं होता कि प्रोजेक्ट कहाँ जाएगा, लोगों को पसंद आएगा या नहीं, सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो गिल्बर्ट कहती हैं भरोसा रखो।
किस पर?
प्रोसेस पर।
हाँ, प्रोसेस पर, उस अनदेखे जादू पर, और हाँ, थोड़ा खुद पर भी। अच्छा, यहाँ वो दो तरह के क्रिएटिव लोगों की बात करती है ना, एक शहीद और दूसरा मसखरा।
हाँ, मार्टियर और ट्रिक्स्टर। शहीद वो है जो मानता है कि असली आर्ट तो दुख, दर्द, कुर्बानी से ही निकलता है, वही तड़पता हुआ कलाकार वाली घिसी पीटी इमेज। और मस्खरा यानी ट्रिक्स्टर, वो चालाक है, हल्का फुल्का है, क्रिएटिविटी को एक खेल की तरह लेता है, मजे से काम करता है।
तो गिल्बर्ट हमें क्या बनने को कहती हैं?
मस्खरा कहती हैं काम को सीरियसली लो, पर खुद को ज्यादा सीरियसली मत लो। नतीजों से बहुत छिपको मत, प्रोसेस एंजॉय करो, गिरो तो धूल झाड़ो और फिर खेल में लग जाओ। और किताब का आखिरी हिस्सा हमें ले जाता है दिव्यता की ओर, डिविनिटी। ये क्रिएटिविटी को एक गहरा स्पिरिचुअल मतलब देता है।
हाँ, गिल्बर्ट मानती हैं कि जब हम कुछ नया रचते हैं तो हम एक तरह से डिवाइन में हिस्सा ले रहे होते हैं, यूनिवर्स की क्रिएशन प्रोसेस में।
हम उस बड़ी शक्ति के साथ मिलकर कुछ बना रहे होते हैं, को क्रिएटिंग।
शुक्रिया कहने का एक तरीका भी।
हाँ, इस तरह से देखो तो क्रिएटिविटी सिर्फ मेरा काम नहीं रह जाती, वो एक सेवा बन जाती है उस अनदेखे जादू के लिए जिसने हमें वो आइडिया दिया।
यस, इसे सिर्फ एक हॉबी या करियर से ऊपर उठा देता है, एक जिम्मेदारी और सम्मान का भाव आता है। तो अगर हम इस पूरी किताब के निचोड़ को देखें तो कुछ मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली तो शायद वही डर वाली बात।
हाँ, कि डर दुश्मन नहीं है, बस एक नर्वस साथी है, उसे ड्राइविंग सीट मत दो।
दूसरी बड़ी बात, वो आइडियाज का जिंदा होना और पार्टनर ढूंढना।
हाँ, ये बोझ हटाकर उसे एक रोमांचक खेल बना देता है। मेरा आइडिया नहीं, हमारे पास आया आइडिया। इससे दूसरों के साथ काम करना भी आसान हो जाता है।
तीसरा, क्रिएटिविटी सबका हक है, किसी खास ग्रुप का नहीं, हर कोई हो सकता है।
और चौथा, जो मुझे बहुत जरूरी लगा, वो है पैशन के पीछे भागने वाले दबाव से आजादी।
हाँ, वो कहती हैं पैशन नहीं क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा का पीछा करो।
बिल्कुल, जिज्ञासा ज्यादा सॉफ्ट है, ज्यादा भरोसेमंद है और ज्यादा आसानी से मिल जाती है। एक छोटी सी दिलचस्पी भी पता नहीं कहाँ ले जाए।
किताब में कई ऐसी लाइनें हैं जो याद रह जाती हैं। कुछ खास पर बात करें?
हाँ, जैसे वो कहती हैं, ब्रह्मांड हम सबके भीतर अजीब रत्न दफनाता है और फिर पीछे हटकर देखता है कि क्या हम उन्हें ढूंढ पाते हैं।
वाओ, कितनी सुंदर बात है कि हम सबके अंदर कुछ खास है, बस उसे खोजना है।
और वो परफेक्शनिज्म पर जो कहती हैं वो तो कमाल है।
कौन सी
परफेक्शनिज्म? बस महंगे जूते और फर कोट पहने डर है जो शिष्ट होने का नाटक कर रहा है, जबकि असल में वो बेहद डरा हुआ है।
हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। परफेक्शनिज्म के पीछे का डर साफ दिख जाता है। ये उन सबको राहत देगा जो सही के चक्कर में शुरू ही नहीं कर पाते।
और वो सीधी सी सलाह, पूरा करना अच्छा करने से बेहतर है। डन इज बेटर देन गुड।
मतलब काम को बाहर लाओ, दुनिया में लाओ, उसे हमेशा संवारते मत रहो, खासकर जब कुछ नया ट्राई कर रहे हो। तो इन सब बातों का हमारी रोज की जिंदगी में क्या मतलब है, कैसे अपनाएं इन्हें?
देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि डर लग रहा है, लगने दो, फिर भी शुरू करो।
हाँ, वो कोई नया शौक हो या ब्लॉग लिखना हो या ऑफिस में कोई नया तरीका, बस पहला कदम, डर को साथ लेकर।
और अपनी जिज्ञासा पर ध्यान दो, आजकल क्या चीज आपको खींच रही है, छोटी सी भी हो, जरूरी नहीं कि वो बड़ा पैशन बने, बस उसे थोड़ा टाइम दो, देखो कहाँ ले जाती है।
शायद कोई कुकिंग क्लास या कोई ऑनलाइन कोर्स या बस कुछ पढ़ना,
कुछ भी। और उस परफेक्शनिज्म वाले डर को पहचानो, जब वो कानापूसी करे कि अभी तैयार नहीं है और अच्छा हो सकता है, तो उसे कहो थैंक यू, पर अभी पूरा करना ज्यादा जरूरी है।
पहला ड्राफ्ट कभी परफेक्ट नहीं होता और ये ठीक है।
हाँ, और एक और प्रैक्टिकल सलाह जो गिलबर्ट देती हैं, खासकर अगर आप अपनी कला से पैसे कमाने के प्रेशर में हैं।
हाँ,
वो कहती हैं अगर हो सके तो अपनी दिन की नौकरी मत छोड़ो, अपनी क्रिएटिविटी को एक प्यारे लव अफेयर की तरह रखो, मजे के लिए, उसे बोझिल शादी मत बनाओ जिसने घर चलाना पड़े।
इससे आपकी कला आजाद रहती है, दबाव नहीं रहता। तो इस पूरी बातचीत और बिग मैजिक का निचोड़ शायद यही है कि क्रिएटिविटी को एक भारी दर्द भरे संघर्ष की तरह देखने की जरूरत नहीं है।
हाँ, ये एक हल्की मजेदार और जादुई प्रक्रिया हो सकती है। सबसे बड़ी आजादी शायद इसी सोच को बदलने में है।
और ये याद रखना कि हम सब में वो चिंगारी है, बस डर को संभालना सीखना है और अपनी अंदर की आवाज, अपनी जिज्ञासा को हाँ कहना है।
मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से वो आइडियाज को जिंदा बाहरी शक्ति मानने वाला विचार वो सबसे ज्यादा राहत देने वाला रहा। ये सच में इसे बिग मैजिक बना देता है, एक खेल जिसमें हम बस हिस्सा ले रहे हैं।
और मेरे लिए पैशन की जगह क्यूरियोसिटी को अहमियत देना। आजकल फॉलो योर पैशन का इतना शोर है कि बोझ लगने लगता है। क्यूरियोसिटी एक ज्यादा नर्म, ज्यादा टिकाऊ रास्ता लगता है जो शायद सबके लिए खुला है।
हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे।
हाँ जरूर, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी क्रिएटिव इच्छा है, कोई अधूरा शौक, कोई दबा हुआ आइडिया जिसे आपने डर या टाइम नहीं है या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ सोच के साइड में रख दिया है?
इस बातचीत के बाद क्या आप उस आइडिया को, उस चिंगारी को बस थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा ध्यान देने के बारे में सोच सकते हैं? कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई दबाव नहीं,
बस जिज्ञासा के लिए देखें तो सही क्या होता है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।